पूर्व विन्यास और राज दरबार। विद्यापति ने कीर्तिलता में नगर, राज दरबार और सेना के प्रसंग में अनेक पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया है, जिनसे उस युग के स्थापत्य, भवन निर्माण कला आदि की झलक मिलती है। ये पारिभाषिक शब्द ज़्यादातर संस्कृत और फारसी स्रोतों के हैं, कुछ देशी स्रोतों के हैं या तद्भव शब्द भी हैं। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के शोध सिद्ध निष्कर्षों के आधार पर यहाँ इस संबंध में कुछ विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है। नगर के लिए विद्यापति ने नगर, पट्टन और पुर शब्दों का प्रयोग किया है। नगर के चारों ओर जलभरी खाई थी, जिसे कवि ने मेखला कहा है। खाई का फर्श पत्थर का था, उसकी दीवारों के भीतर झरने अर्थात चूह ऊपर गिर रहे थे। नगर दुर्ग में प्रवेश करने का मुख्य द्वार ही कीर्तिलता में बकवार है। खाई के ऊपर बनाया गया पुल साकम अर्थात संक्रम है। पोखरी का ऊंचा किनारा बांध है और जलाशय के भीतर बनाया गया समुद्र गृह नीर निकेतन अर्थात जलगृह है। नगर में यथास्थित सोपान, तोरण, फव्वारे, जालीदार झरोखे और गुप्त द्वार थे। कीर्तिलता में फव्वारे के लिए यंत्र जोरण या यंत्र जोवण, जालीदार झरोखे के लिए जाल गाओक और गुप्त द्वार के लिए खंडिया शब्द आया है। प्राकृत कोश और हेमचंद्र की देशी नाममाला में एक देशी शब्द है खंडी, जिसका अर्थ है छोटा गुप्त द्वार या किले का छिद्र। पुरविन्यास की चर्चा करते हुए विद्यापति ने जिन पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया है, उनमें से कुछ संस्कृत स्रोत के हैं, कुछ देशी स्रोत के। शाखा नगर राजधानी के बड़े मोहल्ले हैं। श्रृंगाटक चौराहा या मुख्य चौक है। आक्रीडंते से आक्रीडन या अखाड़े की ओर संकेत है। गोपुर नगर का प्रधान द्वार है। बघटी से क्या तात्पर्य है, प्रमाण पूर्वक कहना कठिन है। डॉक्टर अग्रवाल ने इसे सर्राफा बाजार का अनुमान किया है। वल्लभी स्तंभों पर बनी मंडपिका है। वीथि बाजार की गलियों को कहा गया है। अटारी, ओवरी, रहट और घाट चारों देशी शब्द है और इनका अर्थ स्पष्ट है। ओवरी एकांत गृह या कोठरी है। कौसीस कोष्टक में कपि शीर्ष किले की दीवार के ऊपर बनी हुई छोटी छोटी बुर्जियों को कहते थे। प्राकार किले का परकोटा है। डॉक्टर अग्रवाल के अनुसार आवट्टवट्ट दाहिने घूमने वाले मार्ग हैं और विवट्टवट्ट बाएं घूमने वाले मार्ग हैं। बाजार में प्रवेश करते ही कसेरी बाजार अर्थात पसरा है। फिर कई हाट हैं। धनहटा डॉक्टर अग्रवाल के अनुसार जौहरी बाजार, सोनहटा, पनहटा कोष्टक में मध्य का बाजार या पान दरीवा कोष्टक बंद, पकवान हटा अर्थात पकवानों के हाट, मछ हटा अर्थात मछली बाजार। राजपथ के निकट चलते हुए वेश्याओं के निवास दिखाई देते थे, जिनके निर्माण में विश्वकर्मा को ही बड़ा प्रयास करना पड़ा होगा। नगर में सहस्रों भवनों के बीच स्वर्ण कलश और ध्वजा से युक्त राजा प्रसाद दिखाई देता है। राजा प्रसाद के लिए शब्द आए हैं धवल हर। हर संस्कृत धवल गृह का अपभ्रंश है धवल हर। अब भी धौरहर या धरहरा शब्द में इसका चिन्ह शेष है। बनारस में माधव राव का धरहरा मशहूर है। राज दरबार का वर्णन करते हुए विद्यापति ने स्थापत्य संबंधी संस्कृत शब्दों के साथ साथ फारसी शब्दों का ही प्रयोग किया है। शाही महल को एक जगह उन्होंने महल मजेदे यानी महल मजीद कहा है। बादशाह का दरबार खास समस्त पृथ्वी मंडल के ऊपर है। महल के द्वार खोल यानी द्वार में बने हुए प्रकोष्ठ में द्वारपाल नियुक्त है। दरबार के भीतर सदर दरवाजे, दर सदर से शाही महल के सामने का लंबा चौड़ा मैदान दारीगह अर्थात दरगाह पड़ता था। भीतर वारीगह यानी दरबारे आम, निमाजगह यानी महल के भीतर की मस्जिद, शोआरगह ख्वारगाह यानी आहार मंडप, शोरमगह अर्थात खुर्रमगाह यानी बादशाह का शयन गृह या सुख मंदिर का उल्लेख क्रमानुसार हुआ है। इसी प्रकार प्रमद वन अर्थात राजभवन का उद्यान, पुष्पवाटिका, कृत्रिम नदी, क्रीड़ाशैल, धारागृह, यंत्र व्यजन अर्थात यंत्र चालित पंखा, श्रृंगार संकेत, माधवी मंडप, विश्राम चौरा, चित्रशाली, खटवा हिंडोल, कुसुम शैया, प्रदीप माणिक, चंद्रकांत शिला, उद्यान में यत्र तत्र लेटने या बैठने के लिए लगाई गई शिलाएं और चतुस्सम पल्लव अर्थात चंदन, अगुरु, कस्तूरी और केसव की चतुस्सम सुगंधि से भरी हुई वापी का उल्लेख आया है। ऊपर वारीगह और शोरमगह का उल्लेख क्रमशः दरबारेआम और शयन गृह के लिए आया है। फारसी में बारगाह और खुर्रमगाह शब्द खेमों या तंबुओं के लिए भी इस्तेमाल होता है रहा है। आईने अकबरी का हवाला देकर डॉक्टर अग्रवाल ने लिखा है कि बारगाह नामक तंबू राज दरबार के काम आता था। बड़े बारगाह में 10,000 आदमी तक बैठ सकते थे और उसे 1,000 फर्राश एक हफ्ता में खड़ा कर पाते थे। इसी प्रकार खुर्रमगाह एक ऐसा खेमा था जो यात्रा के समय शाही शयनागार का काम देता था। इब्न बतूता ने इसे शाही शयन का खेमा कहा है। डॉक्टर अग्रवाल ने ठीक ही लिखा है कि उद्धरण चिन्ह शाही शामियाने महलों के विशेष भाग के अनुरूप बनाए जाते थे और वैसे ही उनके नाम रखे जाते थे, इसीलिए वारीगाह खोरमगाह ये खेमों के नाम भी थे। कीर्ति लता डॉक्टर अग्रवाल पृष्ठ 137। सैनिक प्रयाण के प्रसंग में विद्यापति ने एक चोई सरईचा सरमान वारीगह और मंडल नाम के 5 प्रकार के तंबुओं का उल्लेख किया है। एक चोई एक चौ पर खड़ा होने वाला तंबू है। डॉक्टर अग्रवाल ने बताया है कि वर्ण रत्नाकर में वस्त्र गृह वर्णन के अंतर्गत सरईचा और सरमान का उल्लेख है तथा इब्न बतूता के अनुसार सराचा लाल रंग का शाही खेमा होता था जिसका इस्तेमाल अमीर उमरा ही कर सकते थे, बाकी लोग सफ़ेद रंग के सराचा का इस्तेमाल करते थे। सरमान फारसी शारवान लाल रंग का ऊंचा शाही शामियाना होता था, इसीलिए जायसी ने उसकी उपमा लाल रंग के बादलों से दी। उठी सरवान गगन लहिछाए जान हुराते मेघ दिखाए। आईने अकबरी के मुताबिक मंडल वस्त्रों का बना हुआ गोल तंबू होता था, शायद इसीलिए कीर्तिलता में एक जगह इसे अंबर मंडल भी कहा गया है। डॉक्टर अग्रवाल का विचार है कि तुर्कों के आने से पहले प्राचीन भारत में इसका व्यवहार वस्त्र गृह के रूप में होता था। उन्होंने लिखा है उद्धरण चिन्ह जैसा इसके नाम से प्रकट है यह हिंदू युग का वस्त्र गृह या तंबू था। बौद्ध संस्कृत साहित्य में मंडल माड़ का उल्लेख आया है किंतु इसका सटीक वर्णन माघकृत शिशुपाल वध में आता है जिससे विदित होता है कि इसकी रचना गुप्त युग में होने लगी थी। माघ ने इसे सफेद रेशम से बना हुआ गोल राजकीय आवास कहा है। कोष्टक में शुक्लांशु को प्रचित चंद्राकृति नराधिप मिश्र माघ जिसके चारों ओर नीले रंग की कनात का पर्दा अर्थात नीलाभ्र पंक्ति प्रवेश खड़ा किया जाता था। कीर्तिलता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल पृष्ठ 260 से 261। इस प्रकार पूर्वन्यास और राजदरबार शीर्षक यह निबंध यहीं पर समाप्त होता है।